हालेलुया।
दुआ करें।
जब खुदावंद के कलाम को देखते हैं जबूर 27 उसकी 10वीं आयत में खुदा का बंदा दाऊद कहता है, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ देंगे तो खुदावंद मुझे संभालेगा। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन खुदावंद के मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। इसलिए हम ईमानदारों को खुदा के कलाम को हल्के से लेना नहीं चाहिए। बहुत अहम कलाम है, इसका हर एक शोशा, हर एक नुक्ता, हर एक नविश्ता कुदरत से पुर है। और याद दिलाना चाहता हूं कि खुदा का जिंदा कलाम तब ही हमारी जिंदगियों में जिंदा होता है जब हम उसे जगह देते हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगियों में उसके कलाम को हर रोज मांगने की जरूरत है कि हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी हो, हमारी भूखी और प्यासी और तहाई जिंदगियों के लिए जिंदगी का पानी हो, हमारी बंजर जमीनों की जिंदगियों के लिए खुदा का कलाम खाद की मानद हो, और हम भूखों के लिए खुदा का कलाम रोटी की मानद ठहरे। और आज मैं चाहता हूं कि हम अपने मुतालिया को मुसलसल जारी रखते हुए खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि यूहन्ना खुदावंद यीशु मसीह का शगिर्द मुकाशवा की किताब को लिखते हुए कहता है उसके दूसरे बाब की 14वीं आयत में, अपने ताज को थामे रहो, ऐसा ना हो कि तुम से तुम्हारा कोई ताज छीन ले। सो हमारा मुखालफ अबलीस यही चाहता है कि हम जब यीशु मसीह की हजूरी में खड़े हों तो खाली हाथ खड़े हों। ये दुनिया यही चाहती है कि दुनिया की खूबसूरतियों में, चमक धमक में हम खो जाएं ताकि उस अजर से महरूम रह जाएं। सो आए आज हम फिर क्रंथियों के नाम पालूस रसूल का खत उसका 3 बाप, पहला क्रंथियों 3 बाप उस पर गौर करेंगे और यहां पर सीखेंगे कि जो प्रस्त शुरू और सच्चाई से की जाती है उसका अजर आसमान पर कायम रहता है, और जो अबादत, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि ए फकीयो फरीसियो रियाकारो तुम दिखावे के लिए करते हो, उसका अजर आसमान पर कुछ भी नहीं। इसलिए पालूस रसूल, आइजक बैठ जा, पहला करंथियो 3 बाप उसकी 10 आयत, मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दनाम अमार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। खुदा के कलाम के वक्त खासकर मैं चाहता हूं कि हम पूरी तवज्जो से सुने, जैसे अब मुझसे पढ़ने में गलती हो रही है। आज एक बैठ जाओ, दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि इसी मकसद के लिए हम यहां पर इकट्ठे हुए हैं कि खुदा का कलाम सुने। मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दना ममार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर अमारत उठाता है, बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी अमारत उठाता है, क्योंकि सवाए उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई उस नींव पर सोने या चांदी या बेशकीमती पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उसका काम बताएगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमाएगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर जलते जलते। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सबकी रहनुमाई हो। इस हवाला में खुदा का बंदा पालूस रसूल ईमानदारों को कहता है कि मुझे जो तफीक जो ने रहनमाई मिली है, जो खुदा की तरफ से मुकाशवा मिला है कि मैं कलीसिया की तमीर एक दना ममार की तरह। ममार किसे कहते हैं? मिस्री को, जो घर बनाता है, जो बुनियाद से शुरू करता है। सो पालूस रसूल कहता है कि दना ममार की तरह, उस मकान बनाने वाले की तरह हर एक चीज को दुरुस्त बनाऊं और जब उस पर इमारत उठाऊं तो उसकी दीवारें टेढ़ी ना हो, उसकी छत भींगी ना हो और या फिर उसके फर्श में कोई और मुश्किल हो। पालूस रसूल की यही ख्वाहिश है कि कलीसिया की सही तौर से दुरुस्तगी की जाए। और जब वो कहता है कि दूसरा, यानी कि वो झूठे उस्ताद जो उस दौर में कलीसिया में आते थे, जैसे आज के दौर में भी हैं, आते थे कलीसिया को बहकाने के लिए कि यीशु मसीह की बजाय तुम्हें और इंसानी रस्मों और इंसानी तरीकों के पीछे जाने की जरूरत है, उन सबको क्या कहता है? झूठे ममार या गुमराह करने वाले लोग। सो इन सब बातों को वो बयान करके जब वो नीचे आता है तो वो कहता है यीशु मसीह हमारी बुनियाद है, यीशु मसीह हमारी बुनियाद है। आपकी और मेरी बुनियाद कौन है? यीशु मसीह। अब हम सब पर ये बात क्या है? मुनासिब है कि हम किस तरह की दीवार खड़ी करते हैं, हम आसमान पर किस तरह का मकान बनाना चाहते हैं। बाइबल मुकद्दस में जिक्र आया है कि किसी अकलमंद आदमी ने मकान बनाना शुरू किया और मकान बनाने से पहले उसने तमाम लागत का हिसाब लगाया कि कितना इस पर खर्च आएगा, कितना टाइम लगेगा और कितना कुछ मेरे पास है। जो इसी तरफ इशारा किया जाता है कि जब कोई यीशु मसीह को कबूल करता है तो यीशु मसीह कहता है अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी का इनकार करे। अपनी खुदी से मुराद यानी कि हर वो बात जो हम अपने तरीके से सोचते हैं ये दुरुस्त है और खुदा को कहते हैं कि ये गलत है, उन सब चीजों का इनकार। खुदा कहता है मेरी परस्तिश करो, इंसान होते हुए कहते हैं हम किसी और की परस्तिश करेंगे। खुदा कहता है मेरी मानो, हम इंसान होते हुए कहते हैं कि हम अपनी खुदी की बात मानेंगे। खुदा कहता है कि मेरे रास्तों पर चलो, हम इंसान होते हुए कहते हैं कि नहीं, हम अपने रास्तों पर चलेंगे। सो लागत का हिसाब लगाना जो मसीही जिंदगी की तरफ इशारा है। किस तरफ इशारा है? मसीही जिंदगी। किस तरफ इशारा है? मसीही जिंदगी। मसीही जिंदगी दुखों से भरी हुई है लेकिन उन दुखों में क्या मिलेगा? इत्मीनान, तसल्ली, हफाजत, कभी भी खुदा हमसे जुदा ना होगा। इसलिए आप सबसे ये सवाल है, आप कैसा चाहते हैं कि आपका मकान आसमान पर हो? एक दीवार, दो दीवार या छत या सिर्फ बुनियाद ही बुनियाद हो? कैसा मकान चाहते हैं आप? सब अच्छा मकान चाहते हैं तो फिर उसके लिए काम यहां पर करना होगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका मकान जो आसमान पर हो उस पर सोने चांदी और बेशकीमती पत्थर लगे हों? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं लेकिन इसके लिए मेहनत होगी, इसके लिए फरमा बरदारी होगी, इसके लिए खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में जगह देनी होगी, इसके लिए कलामे खुदा को अपनी जिंदगियों में अवलत देनी होगी, इसके लिए खुदावंद खुदा के कलाम को मानना होगा। और ये कब होगा? शुरुआत कब होती है? यीशु मसीह ने क्या कहा था? जाओ जाकर शिगिर्द बनो, जाओ जाके शिगिर्द बनाओ। शिगिर्दियत से शुरू होगी बात। शिगिर्द बनने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है और जब सीखेंगे तो आपके और मेरे घर में जो आसमान पर है सोने चांदी या बेशकीमती पत्थरों की क्या कह सकते हैं दीवारें और खूबसूरती से सजी होगी। या फिर कौन चाहता है कि आसमान पर हमारा झोंपड़ा हो? कोई चाहता है झोंपड़ा हो? कोई भी नहीं चाहता। नुकसान की बात की तरफ हम नहीं आएंगे। क्या कोई चाहता है कि आसमान पर हमारी झुग्गी हो, एक ही बांस लगा हो और उस पर सड़ी गली घास भूस की तरपाल पड़ी हो? कोई भी नहीं चाहता। सो पालूस रसूल यहां पर कहता है, और अगर कोई उस पर न्यू कौन है? यीशु मसीह। ये बुनियाद पड़ी है, इस बुनियाद पर टांडों की भी दीवार बन सकती है, खजूरों की भी छत पड़ सकती है, तरपाल की भी छत पड़ सकती है। और अगर कोई उस न्यू यो यीशु मसीह है सोने चांदी या बेशकीमती पत्थरों या लकड़ी घास या भूसे का रदा। कौन कौन चाहता है कि पराली की झोंपड़ी हो? कोई भी नहीं। इसलिए अगर सोने चांदी के मकाम को चाहते हैं तो उसके लिए जमीन पर मेहनत करी होगी, और वो क्या है? रूहुल कुद्दस की रहनुमाई में जिंदगी गुजारना। यीशु मसीह की मोहब्बत, ईमान, मोहब्बत, और क्या करना है? रूल कुद्दस की रहनुमाई में चलना है। मेरे साथ एक हवाला देखें, नए अहदनामा में से कुलसियों के नाम पालूस रसूल का खत। अगर सोने चांदी की बुनियाद रखना चाहते हैं, सोना चांदी और कीमती पत्थर यहां पर जाहिर किए गए हैं, ईमानदारों के नेक ईमाल, नेक काम। कुलसियों 3 बाप उसकी 17 आय से, मैं आपके लिए 16वीं आय से पढ़ूंगा, जरा गौर से सुने। सोने चांदी का मकान या खूबसूरती का वो मकाम, अगर आसमान पर चाहते हैं कि हमारी मीरास ऐसी हो, तो इन बातों को अपनी जिंदगी में देखें। 16वीं आयत में लिखा है, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। मसीह के कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह देना, पहली बात क्या है? मसीह के कलाम को, किसी के कलाम को, पादरी फैसल के कलाम को नहीं, टीयर पाल के कलाम को नहीं, किसी बाऊ बिशप के कलाम को नहीं, किसके कलाम को? मसीह के कलाम को, मसीह के कलाम को। मैं आरजी हूं, मैं कल मर जाऊंगा और ठीक एक महीने में मेरी हड्डियां क्या बन जाएंगी? राख और खाक हो जाएंगी। कोई और भी है? अगर हम मूसा के कलाम को सुनते हैं तो मूसा का कलाम किसका है? मसीह और खुदा का कलाम। पहली बात, मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, और कलाम और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो। एक दूसरे को नसीहत करने की जरूरत है कि जब कोई गलत रास्ते पर जा रहा तो दूसरी बात क्या करनी है? नसीहत करनी। मेरी बेटी, मेरे बेटे, भाई, चाचा, भतीजी, आप गलत रास्ते पर हो। अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मजामीर, गीत और रूहानी गजलें गाया करो। ये ईमानदारों को जेबा है। जैसे कसाई का फर्ज है कि वो कसाई का काम करे, पहलवान को जैसे फर्ज है कि वो पहलवानी करे, दौड़ने वाले पर लाजम है कि वो दौड़ करे, वर्जिश करने वाले के लिए लाजम है वर्जिश करे, सफाई करने वाले के लिए जिम्मेदारी है कि वो सफाई करे, ईमानदारों के लिए क्या है? गीत और रूहानी गजलें गाएं। आगे क्या लिखा है? और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु मसीह के नाम से करो। जो कुछ करते हैं किसके नाम से करें? यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह को मद्देनजर रखते हुए, यीशु मसीह को देखते हुए करें कि मैं यीशु मसीह के लिए कर रहा हूं, कर रही हूं। तो क्या होगी? आपकी बुनियाद के ऊपर सोने चांदी और बेशकीमती पत्थरों की इमारत खड़ी होगी। और आगे क्या लिखा है? बीवियों के लिए, जो बहनें शादीशुदा हैं, गौर से सुने। अगर आप चाहते हैं कि आसमान पर आपकी अच्छी मीरास हो, ऐ बीवियों, जैसे खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबिया रहो। शोहरों की इज्जत करो, ताबिया रहो, जैसे खुदावंद यीशु मसीह के फरमाबरदार हैं अपने खामदों के फरमाबरदार रहें। घबराए नहीं, खामदों को भी कुछ कहा गया है, जितने शादीशुदा हैं वो भी सब सुने जी। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तलख मजाजी ना करो। अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और तलख मजाजी ना करो। तलख मजाजी, चाय में मीठा ज्यादा, सालन में लून कम, कपड़े नहीं धोए, सफाई नहीं की, मुंडे को बच्चे को तैयार नहीं किया, ये नहीं किया, और उस पर तलख मजाजी शुरू। खुदा कहता है, अगर आसमान और जमीन का खालक मालक कहता है कि ये बात दुरुस्त नहीं, तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। तलख मजाजी से नहीं बल्कि मोहब्बत से। आगे, ए फर्जंदो, बेटों से, बेटों और बेटियों से, जरा बेटे और बेटियां गौर से सुन लें। हर बात में अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहो, क्योंकि ये खुदावन में पसंदीदा है। माजद, नईम, आप दोनों बच्चियां, रजेश, क्रिस, मैं, हम जितने सब बेटियां माँ बाप के फरमाबरदार रहें। फरमाबरदारी करने की जरूरत है। ऐ औलाद वालों, जिनके बेटे हैं, बेटियां हैं, अम्मियां, अब्बे, गौर से सुन लें। अपने फर्जंदों को दिक ना करो। दिक यानी कि उनको इतना मजबूर, इतना क्या कहते हैं कि मलामत ना करो उनको, ठट्ठों में, या मजबूर ना करो कि वो बेदिल हो जाएं। और जब बच्चे बेदिल होते हैं तो आगे से मुंह खोलते हैं। दिक करना यानी किसी को चिढ़ाना, किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को बगैर वजह क्या कहते हैं, सताना। ए फर्जंद, ए औलाद वालों, अपने बेटों बेटियों को दिक ना करो। आगे क्या लिखा है जी, ए मालको, नौकरों से कहा गया पहले, ए नौकरों, जो जिस्म के रौ से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमा बरदार रहो। हम जहां कहीं भी नौकरी करते हैं, अपने मालिकों की फरमाबरदारी करने की जरूरत है। आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली से और खुदा के खौफ से। एक सच्चा वाकया है पाकिस्तान ही का। एक औरत किसी मुसलमान घर में इबादत करता, सफाई करती थी, और उसके चाल चलन से छोटी सी बच्ची, तकरीबन 16 साल तक वो माई उसके घर में काम करती रही, और उसकी ईमानदारी से, साफ दिली से, खुदा के खौफ से, उस औरत ने, जो 16 साल की हो चुकी, उसने उस माई से पूछा कि माई तू है कौन? कभी मैंने तेरे मुंह पर परेशानी नहीं देखी, तेरा ईमान, हमारे घर में सोना चांदी हर चीज मौजूद होती है, कभी तूने चोरी नहीं की। मैंने 16 साल में बथेरे दूसरे नौकरों को देखा है चोरी करते, तेरे बारे में कोई शिकायत नहीं आई, तू कौन है? तो उस औरत ने क्या कहा, मैं मसीही हूं। मैं क्या हूं? मसीही हूं। और वो औरत इस बात से वाकिफ थी कि वो आदमियों को खुश करने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, ये नहीं कि तनख्वाह मिली, अगे वधो, नहीं, पूरे दिल से अपने मालकों की खिदमत करो, और खुदा के जैसे खौफ में रहते हो, अपने मालकों की इज्जत वैसे ही करो। 23वीं आयत में लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना के आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदा की तरफ से इसके बदला में तुमको क्या मिलेगी, मिरास मिलेगी। कौन सी मिरास चाहते हैं? घास फूस और या फिर लकड़ी के रद्दों का बना हुआ मकान, जिस पर आंधी चलेगी और उड़ जाएगा, आग लगेगी तो जलकर खाक हो जाएगा। कैसा मकान चाहते हैं हम खुदा की हुजूरी में? कोई भी नहीं। या फिर सोने चांदी और बेशकीमती पत्थरों से बनी हुई इमारत, जिसमें ईमानदारों को हमेशा हमेशा रहना होगा। कैसी मिरास हम बनाना चाहते हैं? सब कहेंगे सोने चांदी की, सब कहेंगे कि मैं यीशु मसीह के साथ बैठना चाहता हूं। अब सबको याद है जब्दी के दो बेटे, जब्दी के दो बेटों ने, यहन्ना और दूसरे ने क्या कहना शुरू किया, यीशु मसीह जब तू अपनी बादशाही में आए, मैं तेरे दाएं बहना बैठना चाहता हूं, और दूसरे ने कहा मैं तेरे बाएं बैठना चाहता हूं। यीशु मसीह ने क्या, ये मुमकिन है, मुमकिन है अगर अपने पूरे दिल से मेरे पीछे चलोगे। हम भी यीशु मसीह के साथ, कौन कौन यीशु मसीह के साथ खाना खाना चाहता है? मुमकिन है। अपने हाथों को साफ और अपने दिल को पाक करने की जरूरत है, ताकि उसके मुकद्दस पहाड़ पर खड़े हो सकें। और यही कहा गया है, जब हम सब ये बातें करेंगे, ये सब खानदानी बातें हैं, खावंद बीवी बच्चे माँ बाप पादरी सब, जब जो काम करेंगे यीशु मसीह के लिए करेंगे, तो उसके बदले में क्या मिलेगी? मीरास मिलेगी। तुम खुदावंद की खिदमत करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का बदला पाएगा। बुराई का बदला क्या है? घास फूस और पराली का वो मकान, वहां किसी की तरफदारी नहीं। यीशु मसीह ये नहीं कहेगा, ये लिशबा का बेटा और मेरा मसेर लगता है, इसके साथ मैं थोड़ी सी क्या कर लूं, तरफदारी कर लूं। नहीं, ये पादरी फैसल का भाई है, इसके साथ तरफदारी नहीं। ये फलां बिशप का बेटा है, इसके साथ तरफदारी नहीं। वहां किसी की तरफदारी नहीं होगी। हर एक को उसके काम के माफिक अजर मिलेगा। सो हम सब पर ये बात मुनसर है कि हम कैसी इमारत बनाना चाहते हैं। यहां पर जो बुरे काम कहे गए हैं, बुरे काम से मुराद है वो तमाम इंसानी काम जिसमें खुदा को खुशी नहीं होगी। सोना चांदी और बेतकीमती पत्थर, ये क्या है? रूहुल कुद्दस में किएगी वो तमाम खिदमत जिसमें हम अपना भला नहीं ढूंढते, बल्कि किसका भला ढूंढते हैं? दूसरे का। हम अपनी तरफदारी नहीं करते, बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। ऐसे कामों की क्या मिलेगी हमें? मिरास मिलेगी। और जिसमें हम अपना मतलब ढूंढते हैं, उसमें क्या होगा? उसका बदला क्या होगा? घास, लकड़ी और भूसे का रदा, जो कि कायम नहीं रहेगा। आए हम दुआ करें। आज इस बात को याद रखें कि आपने सबने कहा है कि हम खुदावन के हजूर अच्छा मकान चाहते हैं। वो जगह यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार की है, उस जगह पर मकान आपकी अपनी मिरास किस तरह की बनाना चाहते हैं, ये आप पर और मुझ पर है। सो आज मौका है खुदावन खुदा के हजूर के, खुदावन हम सबको कुव्वत और ताकत दे ताकि रूह की रहनुमाई में जिंदगी बसर करें। आए हम दुआ करें।